Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company-specific queries. The numbers to call us on are 2342-1050 or 2331-4444. Once again, 2342-1050 and 2331-4444. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Harsh Ranjan.
Namaskar, hazir hain Market Mantra ke ek aur taza ank ke saath. Is karyakram mein desh videsh ki aarthik khabron ka jayza lenge, saath hi nazar dalenge pramukh antarrashtriya share bazaron par. Baatcheet karenge Bombay Stock Exchange, National Stock Exchange ki aur desh ki economy se sambandhit kisi bhi mudde par aap humse sawal pooch sakte hain. दो टेलीफोन लाइन्स हमने आपके लिए खोले हुए हैं. नंबर्स हैं 2342-1050 और 2331-4444. दोनों नंबर दिल्ली के. 011 एसटीडी कोड के साथ फोन लगाएं, अपने सवाल हमसे पूछें, आपके सवालों का जवाब हम देंगे अपने किसी गेस्ट के साथ. और फिलहाल शुरू करते हैं मार्केट मंत्रा. सबसे पहले हेडलाइंस इंग्लिश में.
फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन चेयर्स प्री बजट मीटिंग विद फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, अश्योर्स टाइमली टैक्स डेवल्यूशन एंड अदर ग्रांट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टेट्स. इंडियन इंडिसेस शोज मिक्स्ड परफॉर्मेंस डिस्पाइट हिटिंग फ्रेश हाइज ड्यूरिंग ट्रंकेटेड वीक एंडेड यस्टरडे. बोथ सेंसेक्स एंड निफ्टी क्लोज्ड अराउंड 0.3% लोअर. And crude oil prices settled lower yesterday, pressured by a stronger dollar. Brent crude futures was down to $85.24 per barrel.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व चर्चा, मशवरा और समीक्षा बैठक की. कहा केंद्र राज्यों के विकास के लिए कर हस्तांतरण और अन्य अनुदान समय पर निर्गत करता रहेगा. भारतीय शेयर बाजारों में इस सप्ताह भी उछाल रहा. सेंसेक्स निफ्टी ने नई ऊंचाइयां छुई. बीएसई स्मॉल कैप में 1.5% की बढ़त रही. और कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में मामूली गिरावट. ब्रेंट क्रूड प्रति बैरल $85.24 पहुंचा.
यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन हैज सेड टुडे दैट द सेंटर्स सपोर्ट to states through timely tax devolution, finance commission grants and GST compensation arrears is aimed at boosting growth in the states. Chairing pre-budget consultations with finance ministers from states and union territories for the union budget 2024-25 in the national capital, Ms. Sitaraman also encouraged states to take advantage of the center's scheme for special assistance to states for capital investment. She mentioned that while most loans under the scheme are flexible, some are conditional on states implementing citizen-centric reforms and sector-specific capital projects. The meeting included Union Minister of State for Finance, Pankaj Chaudhary, the Chief Ministers of Goa, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, and the Deputy Chief Ministers of Bihar, Madhya Pradesh, Odisha, Rajasthan, and Telangana, along with other state ministers. Harsh, today a lot of ministers got together and we're talking about the pre-budget scenario over here. And advantage of the center's scheme for special assistance to states for capital investment is what Mayor Sitaraman is encouraging the other states, in fact all the states, to take care of. What are your expectations from the budget?
देखिए राजेश, जब इस साल चुनाव थे और चुनाव के पहले हमने देखा था कि जब अंतरिम बजट आया था फरवरी महीने में, तो एक पूरे साल की रूपरेखा उस बजट में दी गई थी। अंतरिम बजट कुछ ऐसा नहीं था जिससे लगे कि ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए केवल है और जनता को लुभाने के लिए है। तो दो चीजों पे आपको गौर करना होगा कि जब हमने अंतरिम बजट देखा तो उसमें कोई भी लोक लुभावन वादे नहीं थे। वो चीजें शामिल थीं जो देश को आगे बढ़ाएं और राज्य उससे प्रगति करें, क्योंकि एक तरीके से सरकार, मोदी सरकार, निश्चिंत थी कि अगली सरकार भी उनकी आनी है और इसीलिए बजट में ऐसी चीजों को रखे जो विकासोन्मुख हो, जो देश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाएं। और जब आज सरकार बन चुकी है और हम सरकार आम बजट लेकर आएगी, फुल बजट जिसको हम कहते हैं, उसके लिए अभी से ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई, यूनियन टेरिटरीज के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई, चर्चा हुई, और इसमें खास तौर पर जो राज्यों की एक मांग रही थी केंद्र से लगातार कि वो उन्हें सपोर्ट करता रहे ताकि 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 उनका जो विकास का काम है वो कहीं बाधित न हो, जो योजनाएं राज्यों ने चलाई हैं वो कहीं से बाधित न हो इस बात से कि केंद्र के जो पैसे हैं वो नहीं आ रहे हैं। तो पिछले हफ्ते भी हमने देखा था कि सेंटर ने किस तरीके से टैक्स डिवोल्यूशन जो है उसकी अगली किश्त जारी कर दी थी। सरकार गठित होने के साथ ही पहला काम जो मोदी सरकार ने किया था वो कर हस्तांतरण किया था राज्यों को, जिससे कि उन्हें एक बहुत बड़ा भरोसा मिला है। और ये एक महत्वपूर्ण बात है इस बजट की। हमारे एक्सपर्ट जो हैं आज
जयंत रॉय चौधरी
जुड़ गए।
अ वार्म वेलकम जयंतो। जयंतो, वी वेलकम यू टू मार्केट मंत्रा। वी आर नॉट बीइंग एबल टू हियर हिम। जयंतो, कैन यू हियर अस? जयंतो, कैन यू हियर अस? अनफॉर्चुनेटली वी and not being able to hear Jayanto. Harsh, what is important is that the Rajasthan Deputy Chief Minister and Finance Minister today said that the Union Finance Minister has called the finance ministers of all the states, and this is a quote that Diya Kumari has given, has called all the finance ministers of all the states and held a pre-budget meeting, and they took suggestions, and I've also got an opportunity from Rajasthan to put forward our demands here, and of course today I have asked for all the major demands of Rajasthan, and similar to this would be demands being put by other states which we mentioned, like Goa, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Sikkim. Noteworthy is the fact, Harsh, that the GST Council convened for the first time since the establishment of the new government.
बिल्कुल, और इस बारे में महत्वपूर्ण जो चीज है उस पर चर्चा करने से पहले हम ये खबर बता दें कि वस्तु और सेवा कर परिषद यानी जीएसटी काउंसिल की आज 53वीं बैठक नई दिल्ली में चल रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं, और जीएसटी परिषद की पिछली बैठक पिछले साल अक्टूबर में हुई थी, जिसमें प्रस्तावित जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की शर्तों में पात्रता और आयु सीमा को लेकर संशोधन की सिफारिश की गई थी। परिषद ने मोटे अनाज के आटे से तैयार खाद्य सामग्री पर भी जीएसटी न लगाने की सिफारिश के अलावा गन्ना किसानों को बकाया राशि का तेजी से भुगतान करने, पशु आहार के उत्पादन लागत को कम करने और गुड़ पर जीएसटी कम करने की सिफारिश की थी। 30 करोड़ रुपए से अधिक इक्विटी में निवेश किए गए, जबकि डीआईआई करने में और गुड़ पर जीएसटी कम करने की ये सिफारिश की गई थी। और इस मामले में महत्वपूर्ण चीज ये है कि हम लगातार देख रहे हैं कि जब से जीएसटी लागू हुआ है, लगभग हर बार, हर महीने के तौर पर भी आप देखें तो जीएसटी का जो संकलन हो रहा है उसमें काफी बढ़ोतरी हो रही है, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं और इससे न सिर्फ केंद्र बल्कि राज्य सरकारों को भी मदद मिल रही है। इन दोनों खबरों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे आज के एक्सपर्ट जो हैं जयंत रॉय चौधरी जुड़ चुके हैं। जयंतो, मार्केट मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद, बताइए जी।
Jayantu, we were talking about the expectations of the budget. In fact, we also read this story on how Finance Minister had chaired a pre-budget meeting with Finance Ministers of states and union territories and has assured a timely tax devolution and other grounds for development of states. Would you like to throw some light on this?
Well, first of all, of course, this budget is going to be, you know, a very comfortable one. Mainly because the RBI has transferred about 2.1 lakh crores to the central government's coffers as dividend. Secondly, the PSU dividend payout has been extremely high. I think it's been the highest till date, till now, or something about ranging around near about 60,000 crores or so. So all this gives them a lot of cushion to be able to not only do the development work, which the government has been embarking on for quite some time, but also devolve money on time to the states so that they can do their portion of the work. As you know, the states play a very important role in all the development work that is done, whether it's in terms of social infrastructure or in terms of physical infrastructure. So that requires a lot of money, and that money obviously comes from the central devolution of funds, the state share of income tax and customs and excise, etc., etc. So that, I am sure, is going to be one of the highest now. As you know, the income tax figures have also come in. Collections have been fantastic. The indirect taxes have been, again, on a very big high. So hopefully this is going to be one of those big bang budgets.
Okay. We will talk about the expectations from the budget 2024 as we go along. In the meantime, we are joined in by Yogesh Sharma from Delhi. A warm welcome, Yogesh. Please go ahead and ask your question.
Namaskar, Akshavi ko, aur dhanyawad. Mera sawal sir ye hai ki aajkal jo rate cut ke bare mein baat chal rahi hai, rate cut kya hai asal mein, aur retail investors kaise samajhna chahiye. Dusra sawal hai ki market mein aaj bhi aise kuch stocks hote hain jo operators aur operate kiye jaate hain, aur kis tarike se ye ek retail investor ko trap karte hain, wo kya tarike hai, log kaise bach sakte hain inse.
Hi.
Haan, Jayantu.
He is asking us about
रेट कट
जो होते हैं, बेसिकली बैंकिंग रेट की कट की बात हो रही है. यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो रेट पे उधार देती है बैंकों को, उसे कहते हैं रिपो रेट, और जिस रेट पे बैंक रिजर्व बैंक को उधार देती है ओवरनाइट लेंडिंग के लिए, उसको कहते हैं रिवर्स रिपो. उसकी काटने की बात हो रही है. अब ये कटेगी तभी जब रिजर्व बैंक को लगे कि मूल्य वृद्धि की दर जो है वो थोड़ी सीमित हुई है, उसके बाद ही वो करेगी, क्योंकि वो इन्फ्लेशन का दर को बढ़ाने नहीं चाहती है. अब विश्व भर के बाजार में अभी रेट कट की बात चल रही है, क्योंकि सब चाहते हैं रेट कट होने से ग्रोथ को थोड़ा इम्पेटस मिलेगा, आसानी से लोगों को पैसे मिलेंगे जिससे कि वो खर्चा कर पाए, जिससे कि नए फैक्ट्री बिठा पाए. उसी के लिए रेट कट की बात चल रही है, और देखी जाएगी कि आगे जाके कैसा होता है. एक तो फेडरल रिजर्व जो है यूएस का, उसका रेट कट होने से बाकी देश भी अपना रेट नॉर्मली काटती है, पर हमारा देश सिर्फ उसी को नहीं देखती है. हमारे देश हमारी अंदरूनी जो बाजार में जिस तरह से इन्फ्लेशन का दर है उसको देखती है. जब तक ना वो कंफर्टेबल हो तब तक वो रेट का कट नहीं करती है. पर आशा की जा सकती है कि आगे जाके मॉनसून के बाद जबकि दरें कटेगी, तब रिजर्व बैंक भी तय करेगा कि रेट का थोड़ा बहुत वो नीचे की तरफ लाएंगे.
बिल्कुल. भारत भूषण हमारे अगले कॉलर हैं दिल्ली से. भारत जी, स्वागत है आपका, क्या सवाल है?
हाँ सर, नमस्कार.
नमस्कार जी, पूछ लें सवाल.
सवाल तो पूछ रहा हूँ सर, दो मेरे सवाल हैं. एक पूछना ये चाह रहा हूँ सर कि अगर मान लीजिए ए नाम की कोई कंपनी है जिसने फ्राइडे सेशन में अगर 10 times की वॉल्यूम होती है कंपेयर टू वेडनेसडे थर्सडे के अकॉर्डिंग, तो क्या मंडे को वो स्टॉक ऊपर घूम सकता है, कोई संभावना रहती है? दूसरे सर, तो कृषि क्षेत्र की बात हमेशा सरकार कर रही है कि प्राथमिकता दे रही है, इतनी प्राथमिकता देने के बावजूद हमारे कृषि की जो वृद्धि दर है वो अपेक्षाकृत बढ़ क्यों नहीं रहे सर? मत्स्य पालन या हो, या बागवानी हो, या फिर अपना डेयरी उत्पादन और पशुपालन हो, इन सब चीजों पर सरकार क्या कर रही है, कब करेगी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा सर. धन्यवाद.
और जहां तक आपने कहा कि कृषि के क्षेत्र में उत्पादन की बढ़ोतरी, उसमें दो दिक्कतें हमारे पास हैं. एक तो मॉनसून की एक बात रहती है, जब तक ना मॉनसून अच्छी हो तब तक हम उसका बढ़ोतरी नहीं कर पाते हैं. दूसरा, क्लाइमेट चेंज आपको दिख ही रहा है किस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है. 50 degrees के करीब टेम्परेचर था बहुत काफी दिनों से, ऑलमोस्ट 2 महीना इंटायर नॉर्थन इंडिया में, जो हमारी वीट बेल्ट जिसे कहते हैं, वीट या पैडी बेल्ट जिसे कहते हैं, दुआब रीजन, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इस रीजन बहुत इफेक्टेड था। सिर्फ यही रीजन नहीं बल्कि सारा भारतवर्ष इफेक्टेड था। आप महाराष्ट्र देखे, आप गुजरात देखे, बंगाल जैसे कि देखे, वहां पे भी काफी गड़बड़ा रखी थी मौसम, और उस मौसम के गड़बड़ा देने के कारण से काफी सारे खाद्यान्न हमारी उतनी ज्यादा नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए। पर आपने कहा मत्स्यान पालन के बारे में, वहां पे रेट ऑफ ग्रोथ काफी हाई हो रहा है। इनलैंड फिशरीज में जो पॉन्ड्स जिसे कहते हैं, तालाब हुए या बड़े झील हुए, वहां पे हमारा मत्स्य पालन का जो हमारे जो मिशन है वो काफी हद तक हम सक्सेसफुल रहे हैं, उसमें ग्रोथ रेट काफी ऊंचा है। कुछ कुछ प्रदेशों में जैसे बंगाल में तो 10% का भी ग्रोथ रेट दिखा गया है। हम अब कोशिश कर रहे हैं ब्लू वाटर, मतलब कि समुद्री जो मछली पालन और मछली वहां से जिस तरह से हम उठाते हैं उसकी बढ़ोतरी करें, और उस पर भी काफी हम कह सकते हैं कि हम काफी सक्सेसफुल रहे हैं। ऐसे कि अंडमान निकोबार आइलैंड जैसी जगह जहां पे कि हमारे बस्ती कम है, बसती कम है, वहां पे मत्स्य पालन और वहां पे खास तौर से जो सी अंडमान सीज में जो हम मछली पकड़ सकते हैं जिससे कि एक बहुत बड़ा उत्पादन है, वो भी हम कर पा रहे हैं।
रायगढ़ इज द प्लेस फ्रॉम वेयर वी हैव द नेक्स्ट कॉलर। कुश इज विद अस। कुश is he on? No, we've lost touch with him. So, Jento, we were talking about the budget, and the biggest expectation for from the budget 2024 is reduction in the personal tax rates, which is potentially going to stimulate consumption in India. What's your take on the expectation from the budget?
It is a fact that we have to boost consumption. If we don't are unable to boost consumption, then actually our growth rate will falter. So in order to boost consumption, the government will have to, you know, think of tinkering with the tax slabs. Even if the tax rates are not changed, if the tax slabs are changed, then you have the highest tax slab at a higher level than what it is right now, then people will have more disposable income with them. And if there is more disposable income, obviously there will be much more spending on new houses, new cars, and even other consumer durables, etc., that people do buy. And that is what we want. We want, you know, the sales to pick up. We want, which is what the, you know, the industry is also expecting, which is why the latest HSBC Purchasing Managers Index is also, you know, pretty high. There are expectations that the budget is going to be pretty good. The middle class will be enthused, but they will, they should be able to do some buying in future. So let's see what actually happens. Of course, we can't really forecast what the finance minister is going to do. Only she and a handful of, you know, wise men in North Block really know what is actually going to happen.
Okay. We are now joined in by Vikas Gupta from Delhi. Vikas, a warm welcome.
Hello.
Ji Vikas, sawal puchhe apna.
Very good afternoon, sir.
Good afternoon. Rather good evening now.
जी विकास पूछे,
मैं दिल्ली भयंकर से बात कर रहा हूँ।
सवाल पूछे विकास।
सर मेरे दो क्वेश्चन है। सबसे पहला एक क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट कह रही थी, मतलब एक मतलब चर्चा चली थी कि जो पेट्रोल है, पेट्रोल एंड जो सीएनजी वगैरह है, तो वो भी जीएसटी के अंडर में लाना चाहिए। तो क्या गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है फ्यूचर में कि जीएसटी के अंडर में लाया जाए, और क्या हमें इससे पेट्रोल की जो कीमत है उससे कुछ राहत मिल सकती है?
जी बिल्कुल, हम आपका सवाल समझ गए, बल्कि इस पे चर्चा चल रही है, इसमें चूंकि राज्यों की भी भागीदारी है। जी जयंत, आप बताएं एक्सपर्ट ओपिनियन।
हाँ नहीं, जैसे आपने बोला कि राज्यों की भागीदारी है, जब तक राज्य ना तय करे, ना रजामंद हो, तब तक हम ये कर नहीं पाएंगे। राज्य सरकारों का एक बड़ा रोजगार का पथ यही है, पेट्रोल डीजल पे जो कर है उसी से वो रोजगार करते हैं। तो ये वो अपने हाथ से देने नहीं चाहेंगे, देखते हैं आगे जाके क्या होता है। पर किसी न किसी दिन तो जीएसटी के दायरे में भी ये आएंगे।
आना ही है।
जीएसटी के दायरे में आने का मतलब ये नहीं है कि इनके दर घट जाएंगे, ऐसा नहीं, कर रहेगा। परंतु हाँ, कर अचानक अचानक जिस तरह से राज्य सरकार बढ़ा देती है वो शायद ना हो पाए। इससे ज्यादा कुछ नहीं।
बिल्कुल, एक नियंत्रण जो राज्य सरकार अभी अपने पास रखती है कर को बढ़ाने का या कर को कम करने का अपने अवसरों के मुताबिक, वो शायद उनसे छिन जाए, और यही वजह है कि इस पर चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। लेकिन जैसा हमारे एक्सपर्ट ने कहा कि एक समय वो आएगा, आज नहीं तो कल, जबकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भी जीएसटी के दायरे में आना होगा। इस सप्ताह शेयर बाजार कैसा रहा, ये पहले बात कर लेते हैं। एसएल गुप्ता वैसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे गुजारिश, आप थोड़ा सा इंतजार कर लें। भारतीय शेयर बाजारों में सप्ताह भी उछाल रहा, हालांकि कारोबार के अंतिम दिन यानी कल शुक्रवार को सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में मामूली गिरावट रही है। इसके बावजूद सप्ताह के दौरान सेंसेक्स निफ्टी नई ऊंचाइयां देख पाए। बीएसई स्मॉल कैप सूचकांक में 1.5% की वृद्धि रही, जबकि मिड कैप और लार्ज कैप में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। बैंकिंग सेक्टर में खासा उछाल रहा, निफ्टी बैंक इंडेक्स 3% बढ़ा, निफ्टी आईटी 2% और निफ्टी मेटल 1% बढ़ा। हालांकि निफ्टी ऑटो इंडेक्स में 2.5% और निफ्टी एफएमसीजी में 2% की गिरावट रही। इस सप्ताह के दौरान एफआईआईज ने 2030 करोड़ रुपए से अधिक इक्विटी में निवेश किए, जबकि डीआईआईज ने इक्विटी में 6,293 करोड़ रुपए लगाए। इस पर चर्चा करेंगे अपने एक्सपर्ट के साथ, लेकिन पहले चलते हैं एसएल गुप्ता, हमारे श्रोता दिल्ली से जुड़े हुए। गुप्ता साहब, स्वागत आपका, जल्दी से सवाल पूछ लें।
मैं एसएल गुप्ता दिल्ली से बोल रहा हूं।
नमस्कार गुप्ता साहब, बताइए।
हाँ सर, अभी फरवरी के महीने में मेरे फादर साहब की डेथ हो चुकी है, और अच्छी भी बात है, बुरी भी है, थोड़ी सी खुशी भी है, थोड़ा दुख भी है कि एक महीना कम 96 के वो रहे, तो उनकी इनकम टैक्स रिटर्न मेरे को भरनी है एज लीगल हेयर। तो इसमें क्या प्रोविजन होते हैं, मैं साइट पर देख रहा था तो समझ में नहीं आया क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं मेरे को, क्या डिटेल है। विल उनकी रजिस्टर्ड में है मेरे पास,
आप उनके तहत आप उनके लिए आप इनकम टैक्स आप भर सकते हैं, और उसका प्रावधान आपने देखा ही होगा है। आप उनका पैन नंबर कोट करते हुए जिस तरह से पहले भरते थे उसी तरह से भरते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप इनकम टैक्स अथॉरिटीज को एक चिट्ठी लिखें कि आपकी पिताजी के देहांत हो गया है, पर इस साल क्योंकि ज्यादातर इस साल का ज्यादातर अंश जो है वो जिंदा थे, इसलिए आपने उनके बिहाफ पे ये भरा है, और वो आगे से उनका पैन डीएक्टिवेट करते और आपके जो अकाउंट्स वगैरह उनके नाम में है वो तो नेचुरली आप अपने नाम में करा ही लेंगे, या और भी जो लीगल आयाज उनके नाम में कर लेंगे। तो ये सब कुछ डिटेल्स देके आप इनकम टैक्स को उसके बाद चिट्ठी दे दीजिए, परंतु इस वक्त आप उनके पैन नंबर से जैसे कि आप वो हैं उस हिसाब से आप भर के दे दें, कोई दिक्कत नहीं है।
विकास जॉइंस अस फ्रॉम कोलकाता, वार्म वेलकम विकास।
विकास जी बताइए।
विकास, अपना सवाल पूछे।
नमस्ते।
नमस्ते।
शेयर प्राइस का एक्शन कब ट्रेंड चेंज होगा, अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड, और इसका प्रॉफिट रेशियो परसेंटेज कितना होना चाहिए, उसके बाद सेल करना चाहिए, कोई टारगेट प्राइस कैसे ऐसे डिटरमिन करें।
हर शेयर का अपना अपना टारगेट प्राइस रहता है, और हर शेयर का आपको डिसाइड करने पड़ेगा कब बेचना है। आप देखेंगे कि पहले बात तो यह है कि आप इंडस्ट्री स्पेसिफिक जाइए कि कौन सा इंडस्ट्री इस वक्त फायदेमंद रह सकता है। जैसे कि सपोजिंग आपको लगे कि इस वक्त कंस्ट्रक्शन का बूम आने वाला है, तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो है कंपनियां सीमेंट हुआ, स्टील हुआ, उनको देखिए, उनको स्टडी कीजिए, उनमें देखिए कौन सा काफी हाई प्राइस्ड, उनको तो छूएगा मत क्योंकि वो आप छुएंगे तो भी बढ़ेगा बहुत ज्यादा नहीं। जो थोड़ा लो प्राइस्ड है और जिसका आप लगता है इस कंपनी का अंडर वैल्यूएशन हो रखा है मार्केट में, या उतना वैल्यूएशन नहीं हुआ जितना हो सकता है, उनमें आप खरीद लीजिएगा। और जब आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन बूम के तहत चलते हुए वो बढ़ रही है शेयर प्राइस, तो आप सोच लीजिए कि कितना आपको प्रॉफिट बनाना है इसमें से, और उस हिसाब से जब आपको लगे इतना बन गया तो आप भेज दीजिए। आप अगर होल्ड ऑन करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वो लॉन्ग टर्म के लिए अलग बात है, परंतु अगर आप मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करने चाहते हैं तो जितना आपका आपको सोच है कि इतना बढ़ना चाहिए उससे ज्यादा आप ना रखें, क्योंकि शेयर बाजार तो आपको मालूम ही है ऊपर नीचे चढ़ेगा, मार्केट सेंटीमेंट बहुत बड़ी चीज है जिसके तहत ये शेयर बाजार आगे ऊपर नीचे चलता है। आपने देखा ही इलेक्शन का रिजल्ट के चलते हुए शेयर बाजार चढ़ा, फिर नीचे बहुत ज्यादा गिरा, फिर से चढ़ने लगा। तो ये मार्केट सेंटिमेंट्स को आप अवॉइड कीजिए, जब देख रहे हैं कि मार्केट गिर रहा है उस वक्त खरीदे तो बहुत अच्छी बात है, और जब चढ़ रहा है तब बेचिए, ये सबसे अच्छी बात है, उसमें आपको मुनाफा सबसे ज्यादा रहेगा।
अगले कॉलर हैं जितेंद्र जयपुर से। जितेंद्र जी जल्दी से सवाल पूछें, वक्त कम है।
हाँ हाँ बिल्कुल सर, अगर कोई एसआईपी करना रहे स्टॉक मार्केट में तो कौन से सेक्टर में एसआईपी करना चाहिए या लार्ज कैप फंड कुछ भी ऐसा बता दे बस
जी।
ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि किस में आपको दिलचस्पी है, परंतु मेरे हिसाब से कि आपके सेक्टर्स हैं जिसमें बजट के प्रावधान अच्छे होंगे उन सेक्टर्स में आप लगाएं तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
आप वैसे सेक्टर्स को चुन लें जिसमें जो हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि बजट में उनके अच्छे प्रावधान हैं, जैसे अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात सेक्टर को देखें तो लगातार गवर्नमेंट का थर्स्ट उस पर रहा है, उसके जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा रही है सरकार, तो किसी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी कंपनी, म्यूचुअल फंड की अगर आप बात कर रहे हैं तो
रिन्यूएबल एनर्जी हुआ है वो भी एक बड़ी सेक्टर है, एनर्जी एक बड़ी सेक्टर है, ये सब देख सकते हैं।
सो जेंटल, इफ दैट इज द केस देन व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द निफ्टी बैंक इंडेक्स व्हिच गेन्ड मोर देन 3% यस्टरडे?
वेल, बैंकिंग हैज बीन अ फेवरेट फॉर आवर स्टॉक मार्केट फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो दैट ऑब्वियसली इज वन ऑफ द रीजंस, बट यस, as I told you, bank PSUs, by the way, have been giving huge amounts of dividend. That again is another big factor. Entire banking sector has been quite doing well, despite the fact that the rate of interest that we get from banks isn't that great. So it is a good sector to look at.
So do you think our valuations are quite high at the moment, and it's time for them?
It is a little high in many of the the much sought after stocks. But there are other banks which are not that sought after, but whose valuations are reasonable.
Okay. We have Vikas Gupta joining us back from Delhi. Vikas, please ask your question.
Very good evening, sir.
Good evening.
Question stock market se hai.
Ji.
Mujhe jankari ye leni hai, sir. Jaise agar koi share delist hone wala hai, to kya uski information hame pehle nahi mil sakti, kuch mahine pehle ya phir kuch din pehle, ki ye share delist ho raha hai? तो आप मतलब इसे पहले निकाल लीजिए जो भी है, तो क्या इसकी इन्फॉर्मेशन पहले नहीं मिल सकती?
हाँ, मिलनी तो चाहिए आपको, अगर शेयर होल्डर है तो आपके पास नोटिस जरूर जारी होगी कि आपका शेयर जो है ये डिलिस्ट होने वाला है, आपको अगर पहले कुछ करना है तो आप बताइए, ये तो आता है, इस तरह के नोटिस तो आते हैं, मैसेज भी आएंगे, मेल भी आएंगे, और साथ ही साथ में बीएसई, अगर आप बीएसई का जो नोटिस बोर्ड है वो आप ट्रैक करें तो वहां पे आपको ये खबरें भी मिलती रहेंगी।
Jento, will quickly tell you how the crude oil prices settled lower yesterday, pressured by a stronger dollar, but still bagged the second straight weekly win amid signs of improving demand in the United States. Brent crude was down by 0.55% to $85.24 per barrel. The U.S. West Texas Intermediate WTI crude was lower 0.69% to $80.73 per barrel when reports last came in.
और जैंटो, अभी हम बात कर रहे थे कि इस सप्ताह शेयर बाजार कैसा रहा, एक दो कॉलर्स ने शेयर मार्केट के बारे में भी पूछा, अगर हम देखें तो जो ग्रोथ हो रहा है हमारे शेयर मार्केट का जो बढ़ रहा है, बड़ा ही रोबस्ट लग रहा है, क्योंकि इस हफ्ते का अगर आप इक्विटी में एफआईआई वर्सेज डीआईआई देखें तो डीआईआई कहीं ज्यादा है, उससे लगभग 3 गुना ज्यादा है, तो जो डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर्स हैं और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, इनकी भागीदारी से मुझे लग रहा है कि भारतीय शेयर बाजारों को एक बहुत बड़ा आधार और आत्मविश्वास मिला है। एम आई राइट?
हाँ, वो काफी हद तक आप सही कह रहे हैं, सही फरमा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है उसे हमारा जो बजट प्रक्रिया उसके बारे में ज्यादा समझ है, तो मेरे ख्याल से वो बेट कर रहे हैं कि बजट अच्छी होगी और बजट से काफी फायदा होगा उनको, और उसीलिए वो उस बेटिंग के दौरान वो अपने शेयर बाजार में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस मामले में थोड़ा सा स्लो ऑन द अपटेक कह सकते हैं, वो इंटरनेशनल क्यूज को ज्यादा अच्छी तरह से समझते हैं और उसके हिसाब से खेलते हैं, परंतु मुझे लगता है कि जैसे भी है वो भी एफआईआई विल ऑल्सो प्ले इन द पार्टी, पार्टी तो होने वाली है और उसमें कौन किस तरह से खेले देखी जाएगी।
वेरी वेरी ब्रीफली, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द मार्केट इन द कमिंग वीक?
I think it is going to rise, and but only thing is, if it rises too much, then of course there will be a small correction ahead of the budget. But nevertheless, I think things are on a roll right now.
Okay,
Jento, thank you so much for being with us, and
aur vishesh aabhar Jayant, Market Mantra team ki taraf se aaj.
Thank you so much. Yeah.
Thank you.
And before we close the headlines once again, Finance Minister chairs pre-budget meeting with finance ministers of states and union territories, assures timely tax devolution and other grants for development of states. Indian indices shows mixed performance despite hitting fresh highs during truncated week ended yesterday. Both Sensex and Nifty closed around 0.3% lower, and Brent crude prices settled lower yesterday. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
Namaskar. Market Mantra.